ओम शांति। बहुत सुंदर गीत हम सुन रहे थे, मैं जगमगाती झिलमिलाती मुस्कुराती मस्तक मणि हूँ। और भी आगे इसमें गीत में वर्णन था, मेरा धर्म शांति मेरा कर्म शांति मैं हूँ ओम शांति, मैं अजर हूँ मैं अमर हूँ। तो जब इस प्रकार की हम अपने आप से अंदर ही अंदर बातें करते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अगर मैं इस तरीके से अपने आप से बात कर रही हूँ भीतर ही भीतर कि मैं जगमगाती हूँ, मैं झिलमिलाती हूँ, मैं मुस्कुराती हूँ, मैं मस्तक मणि हूँ, मेरा धर्म शांति मेरा कर्म शांति, मैं ओम शांति, मैं अजर हूँ मैं अमर हूँ, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम की संतान हूँ, जो भी ये जो भीतर ही भीतर हमारी वार्तालाप चलती है, इसको हम क्या नाम देंगे? हमारे पास समान की बहुत लंबी लिस्ट होती है, है ना? उसमें ये आता है, मैं मस्तक मणि हूँ, समान की लिस्ट में है ये, मैं अजर हूँ मैं अमर हूँ, है? ये है स्वयं को मान देना, समान माना, स्वयं को मान देना। और स्वयं को मान देना मतलब क्या? स्वयं को मान देना माना क्या? स्वयं को समझना। देखो गणित में हम कहते हैं, गणित में कहीं मान लो, ऐसे बोलते हैं ना, मान लो ये मतलब समझ लो, तो मान मतलब समझना। तो अपने आप को समझना कि मैं हूँ मस्तक मणि, मैं हूँ अजर अमर। तो जब हम ऐसे अपने लिए कहते हैं, वो है स्वयं को मान देना। लेकिन सिर्फ कहने मात्र से नहीं, अगर मैं अपने आप को कहती हूँ मैं अजर हूँ मैं अमर हूँ और मृत्यु का मुझे डर सता रहा है, तो मैंने समझा क्या अपने आप को सही में? क्योंकि समझना माना धारण भी करना। तो मैंने अपने आप से कहा जरूर कि मैं अजर हूँ अमर हूँ, लेकिन मुझे मृत्यु का डर लगता है। तो अजर हूँ अमर हूँ बोलने का मतलब क्या? कोई मतलब नहीं। तो जब बाबा हमें कहते हैं समान का अभ्यास करो, मतलब वो खुद को समझो, वो बात अपने अंदर में धारण करो और वैसे प्रैक्टिकल में आओ। और ये है एक समान, और दूसरा शब्द है सम्मान, जिसको आज बाबा ने रिगार्ड शब्द लेते हुए बहुत इस पर बोला। बाबा ने रिगार्ड सम्मान, क्या होता है सम्मान? सम्मान क्या होता है? सम प्लस मान इज इक्वल टू सम्मान। और ये सम शब्द आया है सम्यक से, और सम्यक मतलब उचित। तो उचित रूप से मानना, उचित रूप से समझना, ठीक से समझना, सही रूप में समझना। तो हम दूसरों को तभी सही रूप से समझ पाएंगे जब हम अपने आप को सही रूप से समझ पाएंगे। अगर अपने आप को ही सही रूप से नहीं समझा है तो मैं दूसरे को उस रूप से समझ पाऊंगी? नहीं समझ पाऊंगी। तब बाबा ने आज कहा कि रिगार्ड देने की अक्कल किस में होगी? जो देही अभिमानी है, जो आत्म अभिमानी है। और आत्म अभिमानी माना क्या? वही आत्मा, स्व का मान, स्व माना आत्मा। आत्मा को जिसने समझा वो ही आत्मा अभिमानी स्थिति बना सकता है, जिसको बाबा ने कहा कि प्रैक्टिस करनी है बार बार इसकी। यहाँ तक कि बाबा ने कहा तुम बच्चे बाप के सामने बैठे हो, परंतु फिर भी देह अभिमान 63 जन्मों का है ना, तो बाप का रिगार्ड रखते हो। बाप के सामने बैठे हो लेकिन बाप का रिगार्ड नहीं रखते, क्या मीनिंग है इसकी? बैठा बाप के सामने हूँ और बाप का रिगार्ड नहीं रखते, इसका मतलब क्या है? कि मतलब बाप जैसा है, जो है, उसको हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। रिगार्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जैसे बाबा ने आज कहा ना कि बहुत बच्चे सर्विस में होशियार होते हैं तो उनकी मांगनी की जाती है कि फलाने को भेजो, और फलाने को भेजो मतलब इनवाइट भी करते हैं जरूर, लेकिन फिर बाबा ने आगे ये भी कह दिया, हाँ भी कह दिया कि रिगार्ड नहीं रखते हैं, इनवाइट जरूर करते हैं, उनसे सेवा जरूर लेते हैं, वो हमसे होशियार है ये समझ के बुलाया भी, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा रिगार्ड नहीं रखते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा? कहा कि ऐसे कभी नहीं कहेंगे ये हमसे 100 गुना ज्यादा अच्छे हैं। वो कब कह पाएंगे? जब हम उनको सुनेंगे, जब हम उनको समझेंगे, तब तो मैं बोल सकूंगी ये मेरे से कितना ज्यादा अच्छा है। तो कई बार हम इनविटेशन तो दे दिया, और यहाँ तक कि वो वाली फिजिकल खातिरी भी कर ली हमने, हमने बुलाया है उनको, अच्छा सा कमरा दिलाना है, अच्छे से उनकी भोजन की व्यवस्था करना है, तो बाहर से तो सब कर लिया, लेकिन क्या अंदर में उतनी श्रेष्ठ भावना रही उसके लिए? जिसको ही हम कहते हैं ना, तीन बातों पर, तीन स्तर पर हमारा व्यवहार होता है, एक मन, एक वचन और एक कर्म। तो कर्म के लेवल पे तो बुला भी लिया, अच्छा सा कमरा भी दिला दिया, अच्छी सी भोजन की व्यवस्था भी कर दी, शब्दों के नाम पर भी इंट्रोड्यूस करते समय बहुत बहुत अच्छी उनकी महिमा कर डाली, लेकिन मन में क्या भाव रखा उनके प्रति? अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं लोग, तो सिर्फ सेवा करनी थी इसलिए बुला लिया उनको, होता है कई बार, नहीं होता ऐसा? तब बाबा ने कहा कि रिगार्ड नहीं रखते हैं। तो कई बार हम स्थूल रूप से चेकिंग करते कि मैंने रिगार्ड देने में कमी कहाँ कर डाली, हमने तो सारा प्रबंध किया उनके लिए, हम जो अपने लिए सूखा रूखी सूखी रोटी खाते थे, लेकिन मेहमान हमारे घर में हमने इनवाइट किया है, हमने उनके लिए क्या नहीं दिल खोल के बनाया और खिलाया उनको, हम देखो कैसे कमरे में रहते, लेकिन इनके लिए हमने कितना अच्छा एसी का इंतजाम करके दिया, हम कभी एसी गाड़ी में घूमते भी नहीं, इतनी धूप में हम खुद वो धूप सहते रहते, लेकिन इनके लिए हमने ऐसी कार का भी इंतजाम कर दिया, फिर भी ये लोग हमको कहते कि हमको रिगार्ड नहीं दिया। मन में भावना क्या थी उनके प्रति? मन में किस प्रकार की सोच चल रही थी उनके प्रति? क्या उनको मैंने सही तरीके से सुना समझा? अगर मैंने उसको सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो मैं कैसे कह पाऊंगा कि ये मेरे से बेटर है? और तब बाबा ने कहा कि बड़ों का रिगार्ड रखना ये भी अक्ल नहीं है। तो बहुत गहराई से आज बाबा ने हमें बताया, हम तो कई बार सिर्फ स्थूल रूप में देख लेते हैं, मोटे रूप में देख लेते हैं, ऊपरी तौर पर देख लेते हैं, और उसको कहते हैं सम्मान दिया या नहीं दिया, लेकिन बाबा ने बहुत गहरी बात कही कि अंदर का भाव समझ, आप उसको समझे सही अर्थों में, तो शब्द भी अपने आप में यही मीनिंग बताता है, मान माना समझना। तो अगर मैंने अपने आप को, तभी बाबा कहते हैं जो स्वयं को मान नहीं दे सकता वो दूसरों को सम्मान नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने ही खुद को नहीं देखा समझा, क्योंकि हम लोग अपने आप को, बाबा ने कैसे कहा अपने लिए भी कि बैठे बाप के सामने हो फिर भी बाप का रिगार्ड नहीं रखते, क्योंकि 63 जन्मों से देह अभिमान की आदत पड़ी हुई है। मतलब बाबा है एक आत्मा और उसने मुझे ज्ञान दिया कि मैं भी आत्मा हूँ, परंतु 63 जन्मों की आदत है ना, तो मैं अपने आप को आत्मा नहीं समझ पाती हूँ, बार बार मुझे अपना प्रेजेंट में फिजिकल रोल क्या प्ले कर रही हूँ, वो ख्याल में आ जाता है। और इसीलिए देखो भक्ति मार्ग में प्रथा क्या चली आई है कि जब मंदिर में प्रवेश करते हो, प्रवेश करने से पहले द्वार पर जूते चप्पल खोल दो, है ना? और वो भी जूते चप्पल पहले तो चमड़े के ही होते थे, तो जूता चप्पल खोलना माना चमड़ा बाहर रखना। और यहाँ तक कि कई मंदिरों में होता है कि चमड़े का अगर बैग या कुछ और वस्तु है तो वो भी रख देना बाहर, क्योंकि जिससे मिलने जा रहे हो उस लेवल पर आना पड़ेगा। अर्थात जूता चप्पल बाहर रखना, चमड़ा बाहर रखना, मतलब किससे मिलना जाना है आपको अंदर? भगवान से। भगवान तो निराकार है, तो तुमको भी इस चमड़ा माना देह भी क्या है, चमड़ी ही तो है ना। इसलिए तो कहते हैं ना सारा खेल दुनिया में चमड़ी और दमड़ी का ही चल रहा है। और दमड़ी का खेल तो अभी देख रहे हैं 8 नवंबर से कैसा चल रहा है ना? 8 नवंबर से दमड़ी का खेल सबका सामने आ रहा है, किसने कैसा क्या कमाया है दमड़ी को, है ना? तो सारा खेल चमड़ी और दमड़ी पर है। तो जब भगवान से मिलने जाओ तो इस चमड़ी माना ये देह धारण करके जो हमने टाइटल्स ले लिए अपने ऊपर वो सब भुला दो, सिर्फ और सिर्फ आत्मा बनकर उस परमात्मा से मिलन मनाओ। तब सही अर्थों में उसको समझ पाऊंगी ना, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, वो भी मेरा पिता ज्योति बिंदु है। सही अर्थों में मैं समझ पाऊंगी मैं आत्मा प्रेम की स्वरूप, वो प्रेम का सागर, उसमें से निकलने वाली प्रेम की किरणें को मैं अनुभव कर पाऊंगी। वरना वो तो निराकार है, ज्योति बिंदु है, लेकिन मैं तो एक अफसर हूँ, मैं तो एक अफसर हूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, तो मिलाप नहीं होगा, समझ ही नहीं पाएंगे ना सामने वाले को ठीक से, फ्रिक्वेंसी मैचिंग ही नहीं होगा। इसलिए बाबा ने आज बहुत गहरी बात बोली और इसीलिए कहा गया है कि आपको अगर जीवन के सत्यों को सही अर्थों में समझना है तो किस लेवल पे सोचे, ऊर्जा के रूप में। हर चीज ऊर्जा के रूप में होती है और फिर उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, उसमें से वाइब्रेशन निकलते हैं, उस रूप से हर चीज को समझेंगे। मतलब ही अगर सूक्ष्मता से बातों को समझेंगे तो संसार को समझ पाएंगे। अगर मोटे मोटे तौर पर ही देखेंगे तो बातें समझ में नहीं आएगी। और यही हुआ हमारे साथ, खूब राम नाम का जाप कर लिया, खूब मंत्र बोल लिए, खूब मालाएं फेर ली, सब क्या किया, स्थूल रूप से किया, लेकिन यहां से नहीं किया, सूक्ष्म रूप से, मन से नहीं किया, फिर भी क्या रहे? हाँ, क्या कहते हैं, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी रहे हम हरदम दूर, क्योंकि सूक्ष्मता में नहीं गए ना हम। यहां तक कि व्यवहार में भी यही होता है ना, आजकल हम समाज के बीच में रहते हैं, अपनी छवि अच्छी दिखाना चाहते हैं, लेकिन कहीं पर आपस में दो जन की अनबन है तो समाज के बीच में खड़े हैं ना, तो वैसे एक दूसरे को गलत सलत बोलते होंगे, लेकिन समाज के बीच में चार लोग मेरे बीच में ना, तो बहुत प्यार से बात कर लेंगे उससे, सामने वाले को पता चले इतना कितना अच्छा प्यारा रिश्ता है हमारा, बहुत अच्छी गिफ्ट भी भेंट कर देंगे, सामने वाले को पता चले कितना आपस में प्यार है और कितना एक दूसरे को प्रति अच्छी लेन देन करते हैं, लेकिन मन में तो, और फिर हम कहते देखा आप हमें बोलते हो ना कि आप उसके साथ ठीक से बात नहीं करते होंगे, ठीक से व्यवहार नहीं करते होंगे, अब देखो मैंने आपके सामने कितना अच्छा किया फिर भी वो मुझे अच्छे से नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे क्या था? तो इसीलिए बाबा ने आज रिगार्ड पर बहुत अटेंशन खिंचवाया है हमारा, बहुत गुह्यता में जाने के लिए, जैसे कि अब बाबा ने प्रेरित किया है कि ऐसा कहा था बाबा ने कि बड़ों को रिगार्ड नहीं देते, मतलब क्या कहा, ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि ये हमारे से 100 गुना अच्छे हैं, तो वो तो तभी कहेंगे जब समझू ना मैं उसको, समझा ही नहीं है मैंने, और समझा ही नहीं है मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर का देख लिया ना, सुना है फलाने का नाम बहुत है, चलो हम भी एग्जीबिशन लगाते हैं, उसको बुला लेते हैं, लेकिन सही अर्थों में उसके करीब गए हम? समझेंगे कब किसी को? जब उसके करीब जाएंगे। करीब जाने के बिना समझ नहीं सकते। और करीब जब कब जाएंगे हम? जब प्यार हो ना, तो सम्मान देना दूसरे अर्थों में प्यार देना, और वो प्यार दिल का प्यार, दिखावे वाला नहीं। अच्छी अच्छी भेंट प्रस्तुत कर दी, अच्छी अच्छी व्यवस्था कर दी, नहीं, अंदर का प्यार। और वो अंदर का प्यार आज कम है, बाहर का बहुत है, फिर भी रिश्तों में क्या हो रही है? दूरियां बढ़ रही। लोग कहते इतना सब कुछ करते फिर भी रिश्तों में दरारें क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अंदर का जो सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे को अच्छी रीति से समझना, उसके करीब जाना, उसको प्यार से डील करना, उसके संस्कारों को समझना और संस्कारों की रास खेलना। बाबा बताते ना, संस्कारों की रास माना क्या, स्नेह मिलन माना क्या, स्नेह माना कैसे रखना होता है, वही एक उदाहरण बताओ ना, कैसे बाबा एग्जाम्पल देते रास का, कि गरबा रास खेलते हैं ना, तो गरबा रास वो कब अच्छा लगता है? जब ताल से ताल मिलती है, एक का हाथ उठा दूसरे का उसी हाथ पे हाथ लगा, एक का हाथ उठा और दूसरे ने जाके गाल पे मार दिया, तो उसको गरबा रास बोलेंगे क्या? हाँ, वो तो युद्ध का मैदान खड़ा हो जाएगा ना। तो रास खेलना मतलब एक पल का भी अंतर हो जाएगा ना, तो हाथ हाथ पे न लगकर कहीं और लग जाएगा, ऐसा ही होता है ना। तो मतलब संस्कारों की रास खेलना, करीब जाना माना संस्कारों को अच्छी रीति से समझना, और उस रीति से समझकर इसके साथ कैसे डील करना है उसकी प्रैक्टिस करना, तब वो होगा सही अर्थों में रिगार्ड देना। इसलिए बाबा ने आज जो वरदान दिया, वरदान भी क्या था आज, रिगार्ड के संबंध में ही था। क्या था वरदान बोलो, आज बाबा ने क्या वरदान दिया बोलो? बालक सो मालिक बनने का वरदान, लेकिन किस आधार पर? हाँ, हर एक की राय को रिगार्ड देने वाले, विश्व का रिगार्ड लेने वाले, है ना। तो हर एक की राय को रिगार्ड देना मतलब क्या, बाबा ने उसका विश्लेषण क्या बताया? विश्लेषण में क्या बताया? ये तो मेन हेडिंग थी वरदान की, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो सबका रिगार्ड रखना। उसको एक्सप्लेन कैसे किया कि समझो कोई अपनी राय दे रहा है और वो ठीक नहीं भी है, लेकिन उसको क्या करो, कट नहीं करो, क्योंकि और अगर कट किया माना उसका, कट किया माना उसका रिगार्ड नहीं किया, माना अपना ही रिगार्ड नहीं किया, होता ऐसा ही है ना। अच्छा खासा हम दोनों का संबंध था, लेकिन इसने किसी बात को लेकर मुझे एक राय दी और मैंने तुरंत बिना सोचे समझे उसको कट कर दिया। अब जो उसका मेरे प्रति प्यार था वो भी गया, है ना। तब कहा कि आपने उसकी छोटी सी राय की रिगार्ड नहीं रखा, आपने अपना ही रिगार्ड खत्म कर दिया। तो ये कब होगा? हम जब अपने आप को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। जब मैं आत्मा हूं, जिसको बाबा कहते आत्माभिमानी होकर चलना है, तो क्या आत्माभिमानी होकर चलेंगे हम? छोटी मोटी गलतियां हर एक से होती रहती है, लेकिन आत्माभिमानी बनना माना ही अपनी ओरिजिनल स्थिति को याद करना कि हम सब आत्माएं आज इस कलयुग के, मतलब ये कहे सृष्टि रंगमंच पर जब ड्रामा का अंतिम पड़ाव है, कलयुग का अंत, वहां पर हमारे में बहुत सारी हर एक से कुछ न कुछ गलतियां रहती है। लेकिन जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम सब आए थे तब हम क्या थे, सबका धर्म शांति था, सबका कर्म शांति था। तब कोई गलती कर रहा था? कोई गलती नहीं कर रहा था। हर आत्मा, आत्मा के जो गुण है, प्रेम, शांति, खुशी, आनंद, शक्ति, ज्ञान, उसको ही अपने हर व्यवहार से पेश कर रही थी और इसलिए किसी की आपस में कोई भी तकरार नहीं होती थी, क्योंकि वो भी प्रेम रिफ्लेक्ट कर रही है और सामने वाला भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। जिसको बाबा ने कहा कि पदों में तो अंतर जरूर होगा, लेकिन चूंकि उस समय आत्मसमृद्धि इतनी जबरदस्त होती है कि पदों का अंतर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमें क्लियर कट पता होता है कि ये तो सिर्फ रोल मिला हुआ है, वरना हम सब क्या है, एक ही गुणों वाले हैं। भले बाबा कहते उस समय परमात्मा की याद नहीं रहती है कि हम एक पिता की संतान है, वो उस समय याद नहीं रहता है, लेकिन हम सब आत्माएं हैं, चमकती हुई ज्योति है, सबके पास प्यार है, सबके पास शांति है, सबके पास खुशी है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सत्युग में चाहे छोटा पद क्यों न हो, लेकिन हर प्रकार का सुख हर एक को उपलब्ध होगा। भले पद बड़ा है तो वो अधिक मात्रा में होगा, लेकिन इंसान को चाहिए कितना होता है? हाँ, एक गरीब व्यक्ति को भी पेट भरने के लिए दो रोटी चाहिए, अमीर को भी वही चाहिए ना। तो पेट भर गया ना, फिर एक्स्ट्रा में कितना भी हो। तब बाबा ने कहा कि वहां पे हर एक, चाहे पद छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन हर एक को जीवन में जिन सुखों की जरूरत होती है वो सबको होगी, और इसीलिए किसी को कमी नहीं होने से वो रोल जो डिफरेंट है वो किसी को अंदर में खलता नहीं है। और यहाँ पर खलता है ना अंदर में, वो बड़ा क्यों, मैं छोटा क्यों, उसकी अच्छी पोजीशन क्यों, मेरी कम पोजीशन क्यों, है ना। तो ये उसको दूर करने के लिए वो दिन हमें याद करने पड़ेंगे, सत्युग का दिन, कि सत्युग में हम कैसे थे, क्योंकि वापस हमें वहीं पहुंचना है, वापस हमें वहीं पहुंचना है। इसलिए बाबा शब्द यूज करते हैं कैचिंग पावर। हमारे अंदर में वो संस्कार है, नहीं, फिल्म चलती है 3 घंटे की, शुरू में जो दिखता है फिर लास्ट तक, दूसरे शो में वहीं से शुरू हो जाएगा ना। तो मेरे अंदर में वो रील तो है ना, लेकिन बहुत दूर चले गया है, लेकिन अब उसको कैच करना है। वो संस्कार मेरे अंदर है ये समझना है, स्वमान ये है असल में, कि अपने आप को सही अर्थों में समझना कि मेरे पास आज भी वो संस्कार है, बस सिर्फ कमी किस बात की है, प्रैक्टिकल में नहीं ला रहे हैं। पहले तो वो भी पता नहीं था, लेकिन बाबा ने आकर वो हमें याद दिलाया। अब नेक्स्ट स्टेप हो जाती है हमारी, उसको याद करके प्रैक्टिकल में लाना। कई बार घरों में हम बहुत कुछ सामान लेकर आते हैं कि इस चीज की जरूरत पड़ेगी, हम लेके रखते हैं और लेके अलमारी में रख दिया, भाई मेहमान आएंगे ना तब अच्छा सा वो डिश का सेट निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मेहमान को तो अभी सामान खरीद के 10 महीने भी हो गए, अभी तक आया नहीं, तो हम भूल भी गए कि हमारे पास कोई नया डिश का सेट पड़ा है। अचानक से 11वें महीने में पता चला मेहमान आने वाले हमारे यहाँ, अरे मेहमान आने वाले, हमारे बर्तन तो बहुत लिमिटेड है और ये पुराने हो गए, अच्छे नहीं है, उनके लिए अच्छे बर्तन में सर्व करना होगा, हमें परोसना होगा, चलो एक नया डिश सेट लेकर आते हैं, क्योंकि याद ही नहीं है ना। लेकिन नया लेके आते हैं, अभी उतना पैसों का इंतजाम भी नहीं है, अब क्या करे क्या करे, कंफ्यूजन चल रहा है। उतने में घर का और एक सदस्य जो बाहर था आके पहुंचता है, किस कंफ्यूजन में बैठे हो, मेहमान आने वाले हैं, घर में डिश का सेट नहीं है और पैसे भी नहीं। अरे डिश का सेट तो अलमारी में रखा था ना आपने पहले से, फल 10 महीने पहले खरीद के लाए थे, याद नहीं है क्या? हमारे पास पड़ा है। देखो जो कंफ्यूजन था, मन अपसेट हो गया था, जो मूड खराब हो गया था, सिर्फ ये स्मृति दिलाई, खुशी में आ गए, और खुशी में आके वो यूज भी किया। ऐसे है तो हमारे अंदर ही। तो जो बाबा कहते समान में रहो और सम्मान दो, मतलब क्या, अंदर में मेरे वो संस्कार है आज भी। सत्युग में हम चले थे ना प्रेम से सबके साथ, जीवन में खुशियां थी ना, तो उस संस्कार को कैच करके प्रैक्टिकल में जब लाएंगे तब कहेंगे हम समान में रहते हैं, न कि सिर्फ मैंने 21 बार 108 बार बोल दिया अपने आप को, मैं आत्मा खुशी का स्वरूप हूँ, मैं आत्मा खुशी का स्वरूप हूँ, मैं आत्मा खुशी का स्वरूप हूँ, मैं समान में आ गई क्या? हाँ, प्रैक्टिकल में लाना, क्योंकि बाबा ने हमें पहले लेसन में ही बताया संस्कार कब बनते हैं। मन में सोच आती है, वो सोच को प्रैक्टिकल लाना नहीं लाना बुद्धि पहले डिसाइड करती है, फिर हम उसको कर्म में लाते हैं, कर्म बार बार रिपीट होता है, वो जाके संस्कार रूप लेता है। अब मैंने सोच तो लाया, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन परिस्थिति आई, डर गए वहीं पे, कहाँ के मास्टर सर्वशक्तिवान थे, प्रैक्टिकल में तो किया नहीं ना, तो वो संस्कार बना नहीं, तो सही अर्थों में हमने स्वयं को मान दिया। और जब सही अर्थों में मैंने स्वयं को मान नहीं दिया तो मैं दूसरे को क्या मान दूंगा, क्योंकि जैसे मैं हूँ ओरिजिनल स्वरूप में वैसे हर एक आत्मा है, प्रेजेंट भले कुछ भी हो, क्योंकि खेल के मैदान में जाने के बाद तो कुछ ना कुछ चोट आती है ना, तो हर एक को कुछ ना कुछ चोट आई हुई है, लेकिन ओरिजिनली सब कैसे हैं हम, ओरिजिनली तो सभी शुद्ध है, विशुद्ध है, हमारा आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत गहरा प्यार है, एक ही पिता की संतान है। तो इसलिए हमें सही अर्थों में जो बाबा ने आज कहा स्वयं का मान, बाबा ने बार बार ये शब्द कहा, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा ये प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हम स्वयं को समझ पा रहे हैं कह सकते हैं, और जितना हम अपने आप को समझेंगे समान में रहेंगे दूसरों का रिगार्ड रख सकेंगे, सम्मान दे सकेंगे। तो इस आधार से हमें स्वयं की चेकिंग करनी है कि मैं किस हद तक रिगार्ड देता हूँ। सिर्फ रिगार्ड देना ये नहीं कि कोई आ गया तो बातें कर रहे थे चुप हो गए, रिगार्ड वो फिजिकल है ऊपर की लेवल का, लेकिन अंदर में सोच क्या है किसी के प्रति, उसको हमें ध्यान पर रखना है। तब बाबा ने कहा समान में रहे शिक्षा देंगे ना तो वो असर भी करेगी। तो अगर हमने उसको अच्छी तरीके से समझा, उसकी बात को कट नहीं किया, उसको पहले स्वीकार किया, कहा ठुकराओगे तो खुद ही ठुकरा जाओगे, है ना, तो खुद ही ठुकरा जाए उससे अच्छा है दूसरों को भी हम ठुकराए नहीं। और नहीं ठुकराना मतलब क्या, एक तरफ तो बाबा कहता है ठोक ठोक कर मैं तुमको ठाकुर बनाता हूँ, है ना, ठोक ठोक कर ठाकुर बनाता हूँ, तो ठोकना अपने को है, जितना अपने को ठोकेंगे उतना ठाकुर बनेंगे, और जितना अपने को ठोका तो उस समय मुझे क्या फीलिंग हो रही थी वो मैं समझ पाऊंगी, और जब मेरे को कोई मेरी गलती ठीक करता था मुझे क्या फीलिंग आती थी, उस दर्द से मैं गुजरती हूँ ना, तो जब सामने वाले को जब मैं बोलने जाऊंगी तो मुझे वो आएगा ना याद कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, कितनी फीलिंग होती है, होता है ना ऐसा। तो जब हम अपने आप को ठोकेंगे तो वहां से जिन परिस्थितियों से हम गुजरेंगे फीलिंग से, हम सामने वाले की फीलिंग को पहले ही समझ जाएंगे, और तब हम उसको उस प्रकार से, क्योंकि मुझे जब किसी ने कट किया था समझो, मैंने किसी को राय दी थी और मुझे फटाक से किसी ने कट कर दिया था, मुझे कैसा लगा था, अगर आत्माभिमानी स्थिति में है कोई फर्क नहीं, लेकिन देहाभिमानी स्थिति में है तो कितना फर्क पड़ता है। अब सामने वाला अभी उतनी प्रैक्टिस में है नहीं जो, तो मैं क्या उससे आशा रख सकती हूँ कि उसको भी उतनी ही चोट पहुंचेगी अगर उसको हम कट कर देंगे तो। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं को जब तक नहीं समझे, ऐसे तो कहा जाता है जब तक खुद को नहीं समझेंगे खुदा को नहीं समझेंगे। वो भी पॉइंट बाबा ने बोल दिया, आज तुम बैठे हो बाप के सामने पर बाप का पूरा रिगार्ड नहीं रखते हो। ये खुद को ही नहीं समझा तो उसको भी हम समझ नहीं पाते। और दूसरी बात ये भी बोल दी, जितना हम अपने आप को मान नहीं देंगे दूसरों को भी उतना मान नहीं। तो दो बातें, खुद को समझेंगे तो खुदा को समझ पाएंगे, खुद को मान देंगे तो औरों को मान दे पाएंगे। तो आज की मुरली का ये मुख्य बिंदु था कि जिसको अगर, क्योंकि रोज की मुरली से बाबा तो बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन कोई एक भी पॉइंट ले ले कि आज मुझे इस पर फोकस करना है, तो हम अपने जीवन में फास्ट परिवर्तन ला सकते हैं। वरना भक्ति मार्ग में भी रोज मंदिर में जाते थे, कथा कीर्तन करते थे, वो पोथी पढ़कर आते थे और फिर वैसे के वैसे रहते थे, फिर दूसरा दिन हुआ फिर गए पोथी पढ़ के आ गए, लेकिन परिवर्तन जीवन में कुछ नहीं। तो हमें कम से कम भक्ति मार्ग से जब हम ज्ञान मार्ग में आ गए, ज्ञान माना ही समझ, समझ माना ही अक्ल, बाबा ने आज वो शब्द यूज किया हा? कि अक्ल आती है बच्चों को, कौन सी अक्ल होगी, रिगार्ड देने की। तो कितनी बड़ी बात है, छोटा सा ज्ञान का एक पॉइंट, लेकिन इसमें कितनी बड़ी बात समाई हुई है। हम बहुत सारे निगेटिविटी से अपने आप, सिर्फ इतनी बात को भी फोकस करें ना अपने आप बच जाएंगे, वरना बहुत सारा निगेटिव चलता रहता है। प्राय किसके प्रति निगेटिव चलता है, अंदर में चलता है तो स्वयं के प्रति या औरों के प्रति, हाँ किसके प्रति चलता है, औरों के ही प्रति चलता है ना। तो औरों के प्रति क्यों चल रहा है, क्योंकि सम्मान नहीं दे रहे हो। सम्मान क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि स्वयं को ही नहीं समझा है। तो कितनी बड़ी बात है स्वयं को मान देना। तो रिस्पेक्ट और रिगार्ड, ये दो शब्द, इसको हम अंडरलाइन करें आज की मुरली से। तो किसी एक बहन को जब आज हम समझा रहे थे, ये बात मुरली पर डिस्कस कर रहे थे, तो रोज वो हमसे बात करती है बहन मुरली के पॉइंट पर, तो कहा 5 साल की मुरलियां हम रिवाइज करते हैं ना, क्योंकि मुरलियां जो 1936 से चलना शुरू हुई वो कोई हमारे पास रिकॉर्ड तो है नहीं ना। वहां से जब पाकिस्तान से यहाँ आए तो सब वहां का वहां छोड़ के आए, और फिर यहाँ पर भी लास्ट के, क्योंकि ये टाइपिंग वगैरह पहले सब फैसिलिटीज थोड़ी थी, तो लास्ट के बाबा ने जैसे 1969 में अव्यक्त हुए, तो पहले के 5 साल के हमारे पास रिकॉर्ड है मुरली का। तो कहा अगर 5 साल की मुरलियां कब से हम रिवाइज करें, 80 साल हो रहे, 80 साल से बाबा ज्ञान दे रहा है ना, लेकिन उस 5 साल में कितना सारा ज्ञान भरा पड़ा है। उस 5 साल की मुरलियों को अगर हर एक ने एक एक दिन एक एक पॉइंट को पकड़ लिया, तो अब तक तो हम पूरे फरिश्ते बन चुके होते थे। मतलब हम मुरली सुन तो लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत कम करते हैं। और जिसकी ही रिजल्ट, बाबा ने ये भी कहा ना कि जितना जितना देह अभिमानी बनते जाएंगे उतना उतना रिगार्ड ज्यादा होता जाएगा। तो हमको इस पर विशेष ध्यान रखना है कि हर दिन की मुरली मेरे लिए क्या है। मुरली में जादू बोलते हैं ना, तो जादू माना क्या होता है, मुरली तेरी में है जादू, भक्ति मार्ग में भी गाते थे, तो जादू का मीनिंग क्या होता है। हाँ, एक हम भट्टी शब्द यूज करते हैं, हाँ ये ब्रह्मा कुमारियों में यूज होता है, भट्टी का मीनिंग क्या होता है। हाँ, भट्टी का मीनिंग होता है परिवर्तन, कि भट्टी डालने से पहले जो चीज जिस रूप में थी भट्टी में डलने के बाद जब भट्टी से बाहर आएगी, अब उसका वही वाला स्वरूप नहीं रहेगा, बदला हुआ रहेगा। ऐसे ही जादू मतलब क्या होता है? जादू में भी यही होता है ना, दिखाते कुछ और है, पहले वो दिखा, जब जादू करने से पहले वो दिखाता है, देखो ये रुमाल है मेरे पास खाली, और यूं करके कुछ भी मंत्र पड़ेगा और उसमें से कबूतर निकल रहा है, उसमें से कुछ निकल रहा है, परिवर्तन था ना। तो जादू का मतलब क्या है? जादू का भी मतलब ये है कि जादू करने से पहले चीज कुछ और थी, जादू करने के बाद चीज कुछ और हुई। अब हम कहते हैं मुरली तेरी में है जादू भरा, मतलब क्या? मतलब मुरली सुनने से पहले हम कुछ और थे और मुरली सुनने के बाद हम कुछ और हो गए, तभी तो कहेंगे मुरली तेरी में है जादू भरा। तो आज की मुरली से कौन सा जादू लगा हमको? हाँ, रोज अगर हम इस तरीके से चेक करते हैं कि आज की मुरली से मुझे क्या जादू लगा, मतलब आज के दिन मैंने मुरली के आधार से अपने आप में क्या परिवर्तन लाया, अगर लाया है तब ये हमारे मुख से जब शब्द निकलेगा मुरली तेरी में है जादू, तो 100% सार्थक होगा, वरना तो तोते के मुआफिक बोलते रहेंगे मुरली तेरी में है जादू भरा, पर जादू जैसा जीवन में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इसलिए हम जब ऐसा परिवर्तन लाएंगे तब जाकर हमारा चलन, हमारी चलन और चेहरे से बाप प्रत्यक्ष होगा। आज ही किसी से बात कर रहे थे हम, तो कहा संसार आज सुनना भी पसंद नहीं करता है। पसंद नहीं करता इन द सेंस कि हम जानते हैं डिप्रेशन की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी होती जा रही है, और डिप्रेशन अपने आप में कुछ और नहीं है, जो बाबा ने हमें बताया है कि सतो रजो तमो स्टेज से आत्माएं गुजरती है। डिप्रेशन और कुछ नहीं, तमो प्रधानता की स्टेज ही डिप्रेशन होती है। तम माना क्या होता है? अंधकार। आत्मा जो एक ज्योति है, जो प्रकाश है, उसको प्रकाश दिखता ही नहीं, अंधेरे में है अभी तक व्यक्ति। तो अपने जीवन के सत्यों से व्यक्ति जितना परे होता है उतना ही वो डिप्रेशन में चलता जाता है, और ऐसे समय में उसको सुनने की ताकत नहीं रहती है। डिप्रेशन में चले जाना मतलब आत्मा की शक्ति बहुत 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 कम हो जाना, और ऐसे समय में आप कितना भी अच्छा उसको ज्ञान सुनाओ वो उसके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तो फिर आखिर उसको आखिर बदलेंगे कैसे? सेवा तो बाबा कहता है सबको करनी है, तो कैसे करेंगे कि सुनना भी नहीं है लेकिन हमारा चलन और चेहरे से ही वो वाइब्रेशंस ऐसे फैले कि वो हमारे वाइब्रेशंस ही उनके जीवन में रंग लाए। जैसे कहते हैं ना, आज लोग इतने डिप्रेशन में हैं कि खुश रहना ही भूल गए हैं, उनके जीवन में मुस्कुराहट नाम की चीज ही नहीं रह गई है। तो वो मुस्कुराहट कहाँ से आएंगी उनके जीवन में? जब हमारे मुस्कुराते हुए चेहरों से उनको वो वाइब्रेशंस मिलेंगे। तो हमारे चेहरे मुस्कुराएंगे कब? जब हम उससे कनेक्ट होंगे। तो चलिए हम परमपिता से अपने आप को कनेक्ट करें। प्रभु का ध्यान।